सारे शास्त्र एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं कि जीव के अंदर यदि कर्तापन ना रहे तो वो खुद ईश्वर है। तो जीव यदि ईश्वर है फिर ना वहां संसार है ना वहां कर्तार है, जो कुछ भी है वही है। इसी को ब्रह्म स्थिति कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं। और जो ये द्वैत रचना है, जीव भी है और ईश्वर भी है, जब तक जीव के अंदर कर्तापन है तब तक कहा जाता है कि ईश्वर करता है। तो ये द्वंद्व चक्र जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो जीव का कर्तापन खत्म कैसे हो, इसी के लिए सारा ये गुरु का मार्गदर्शन है, ये शास्त्र का मार्गदर्शन है। महाजी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि वास्तव में जीव करता है नहीं, लेकिन अपने आप को इस देह मद के कारण कर्ता समझता है। उसके अंदर यह विश्वास ही नहीं होता कि देह ईश्वर के अधीन कार्य कर रही है, ईश्वर के अधीन चल रही है। कितना भी सोच ले वो कहीं ना कहीं इस बंधन में बंधा ही रहता है कि मैं करता हूं। तो इस कर्तापन को जीव का कैसे खत्म किया जाए, इस सारी अध्यात्म विद्या इसी वास्ते है। तो जब तक जीव को उस ईश्वर का अंदर बोध ना हो, उसकी एग्जिस्टेंस का उसको पता ना लगे, तब तक उसके अंदर ये दृढ़ विश्वास नहीं होता कि वास्तव में मैं करता नहीं हूं और जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है। तो इसीलिए जब हम महाराज जी की बातें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम पार्शियल ही समझ पाते हैं। जैसा वो समझाना चाह रहे हैं वैसा हम उसको नहीं समझते, यानी कुछ का कुछ समझते हैं। तो प्रारंभ में जो हमारे अंदर गुरु श्रद्धा होती है, गुरु को वास्तव में हम अपना गाइड समझते हैं और गुरु को वास्तव में ईश्वर समझते हैं। वो देखने में ऐसा लगता है कि वो देह के बंधन में है, लेकिन वो तीन काल जो देह आपको दिखाई पड़ रही है उससे वो मुक्त है। तो जो ये गुरु की स्थिति है, यही स्थिति उसके शिष्य की भी आनी चाहिए, तभी वो हर प्रकार के दुख के बंधन से मुक्त होगा। तो देह के रहते रहते जीव इस देह से निर्लेप हो जाए तो ये दो चार दिन का काम तो है नहीं, दो चार वर्षों का भी काम नहीं है। उसकी बात दूसरी है, जो पूर्व जन्म में काफी एक एडवांस स्थिति में आकर जिसने देह का त्याग किया, जैसे महाराज जी का जन्म देख लीजिए, महर्षि रमण का जन्म देख लीजिए, कि कितनी छोटी आयु में उनका खुद का कहना है कि इनको ईश्वर का बोध था। उसके बाद वो जो आत्मलीनता ही कहते हैं, जिसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं या अद्वैत स्थिति कहते हैं, उसके बाद भी कितना उनको पुरुषार्थ करना पड़ा उसके लिए, तब जाके वो अवस्था उनको प्राप्त हुई। तो इस मंजिल को पाने के लिए जहां ना दुख है ना सुख है, जहां ना जन्म है ना मौत है, और उस स्थिति में ना वहां सृष्टि है, ना देह है ना संसार है, तो उस अवस्था की प्राप्ति के लिए आपको गुरु तैयार करता है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो एक तरह से जड़ बुद्धि है, क्योंकि अपने आप को मैं जीव भी नहीं समझता, मैं अपने आप को देह समझता हूं। ये जड़ बुद्धि की पराकाष्ठा है। तो इस जड़ता से गुरु ने मुझको ऊपर उठाना है। तो इसको ऊपर उठाने के लिए महाराज जी ने फिर 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया हमको, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, कि इस प्रोग्राम पर यदि कोई मनुष्य चला तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि होश में आ जाएगी। जो सत्पुरुष बातें कह रहे हैं, चाहे वो विचार के रूप में हो चाहे वो वाणी के रूप में हो, वो बातें उसको समझ में आने लगेंगी। जैसे कि वाणी कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर उसका जगत से उद्धार करने गुरु आया है, वो परमेश्वर आया है देह धारण करके। तो यहां कहां मनुष्य की बात आ रही, हम उसको मनुष्य करके पढ़ रहे हैं। वहां लिखा तो है जीव, और हम उसको मनुष्य करके पढ़ रहे हैं। शब्द तो जीव ही हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो भाव है वो मनुष्य का है। तो इसीलिए अब आप देखिए कि एक शब्द का आपने गलत अर्थ निकाला या गलत कंसेप्ट तैयार किया, और इस एक गलती के कारण ना आपको समता बड़ा समझ में आई कभी, ना आपको वाणी समझ में आई, क्योंकि आप कुछ का कुछ समझते रहो। इसीलिए यदि कहीं लिखा है कि जो भी सेवा क्षेत्र में उतरेगा तो ये जो सेवा है उसको ईश्वर प्राप्ति करा देगी, तो आप वहां भी इसका यही अर्थ निकालोगे कि मैं केवल सेवा भी करूं, खूब सेवा करूं, मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, यही तो अर्थ निकालोगे इसका। और सेवा तो देह से ही करोगे ना, तो सेवा करोगे तो देह भाव से कैसे मुक्त हो गया। तो सेवा जरूरी है, लेकिन जहां ये लिखा हो कि सेवा आपको ईश्वर तक पहुंचा देती है, तो वहां आप उसका सीधा अर्थ निकालोगे कि इसका मतलब सेवा सर्वोपरि है, सेवा से ईश्वर मिल जाएगा। यदि सेवा से ईश्वर मिल जाएगा तो 5 पॉइंट प्रोग्राम क्यों लिखा महाराज जी ने, वो भी तो महाराज जी ने लिखा है। तो मैं अपने स्वभाव का शिकार हो जाता हूं, शास्त्रों को पढ़ने में उसका अर्थ समझने में भी अपने ही स्वभाव का शिकार हो जाता हूं, और मैं उस कोटेशन को यूज भी करता रहता हूं। देखो लिखा तो है, लेकिन आप वहां एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, लिखा तो पूरा शास्त्र है वो, तो पूरे शास्त्र के ज्ञान के आधार पर इस बात का एनालिसिस करो कि सेवा से ईश्वर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या सेवा ईश्वर प्राप्ति में सहायता करेगी। तो इस तरह से हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि हर आइटम 5 नियम का महाराज जी ने क्यों हमारे वास्ते करने के लिए कहा है। तो उन्होंने सादगी से प्रारंभ किया ना, सादगी से मतलब क्या होता है, सादा जीवन। सादा जीवन का जो सीधा सीधा सा मतलब होता है वो होता है कि सरल जीवन। और सरल जीवन किसे कहते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार व्यतीत किया जाए, जरूरतें पूरी करने के लिए व्यतीत किया जाए, ना कि शौक पूरे करने के लिए। तो संसार में जो हम फंसे हुए हैं भोगों में, वो जरूरतों के कारण नहीं फंसे हुए हैं, हम शौक के कारण फंसे हुए हैं। और सारी दुनिया इसी जंजाल में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। और यही ख्वाब हम अपनी संतान के बारे में देखते हैं, यही ख्वाब हम अपने देश के बारे में देखते हैं। इसलिए हर देश दूसरे से कंपटीशन करके दिन दूनी रात चौगुनी टेक्नोलॉजी तैयार करता है, रिसर्च करता है और भोगवाद को फैलाता है, जिसको हम आधुनिक विकास कहते हैं। जो हमारा पतन है उसको हम विकास कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य भोगों में फंसेगा, उसका देह का अहंकार कम होगा या बढ़ेगा, विचार करके देखो। तो वो जीव गहरी अज्ञानता में फंसता ही चला जाएगा, वहां से उसको निकालना बड़ा कठिन काम है। जिसका सरल जीवन है उसको निकालना बड़ा आसान है। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीने का तरीका है, हम सब जानते हैं वो स्वार्थ का तरीका है। उसको स्वार्थ कहते हैं, स्वार्थी जीवन कहते हैं। स्वार्थी जीवन की पहचान क्या है कि हमारी हर व्यक्ति से एक अपेक्षा होती है कि ये मेरे काम आएगा, चाहे आपकी इच्छा पूर्ति में काम आएगा या आपकी जरूरतें पूर्ति में काम आएगा या मुसीबत में काम आएगा। लेकिन सबके प्रति आपकी जो अप्रोच रहती है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो आपके अपने समाज के लोग हों, आपकी ये नेचुरल दृष्टि रहती है कि ये मेरे काम आएगा, इससे मुझको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुख प्राप्त होगा। तो ये जो सुख भोगने की लालसा है, ये देह करके ही होती है। जो जीव अपने आप को देह करके देखता है, ये लालसा उसी के अंदर होती है। और जिसका जितना स्वार्थ ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, आप खुद ही देख लीजिए, उसके अंदर संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी उतनी ही कम होगी। और ये सभी घरों में आप कम और ज्यादा रूप में देख सकते हैं। कोई अपनी पत्नी का ही कितना शोषण करता है, यदि पत्नी चला गया वो पति का ही कितना शोषण करती है। माता पिता कई बार अपने बच्चों का कितना शोषण करते हैं, कई बार बच्चे माता पिता का कितना शोषण करते हैं। तो जो प्रेम का हमारा परिवार है वो बोझ का परिवार बन जाता है, एक दूसरे के स्वार्थी स्वभाव के कारण। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपके अंदर। सारी प्रकृति ऐसी चल रही है, पशुओं में देख लो, पक्षियों में देख लो, लड़ाइयां होती ही नहीं होती। एक गाय शैतान टाइप की है, एक गाय सीधी है। आप कभी देखा हुआ दृश्य आपने, उसकी नांद में भी चारा पड़ा है, उसकी नांद में भी चारा पड़ा है। शैतान गाय अपनी चारा खा के उसको सींग मारती है, उसकी नांद का भी चारा खाना चाहती है। ये स्वाभाविक है। प्रकृति में ये तीन गुणों का जो खेल है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तो ये तीनों वृत्तियां हर जीव के अंदर होती हैं। तो वही उनके एक्शन में नजर आता है। तो जो मनुष्य गुरु के सामने पहुंचा है, वो इस रूप में पहुंचा है, इस क्रूड फॉर्म में। तो अब गुरु ने उसको ईश्वर प्राप्ति के लिए लायक बनाना है ना, पहले लायक कैसे बनाएगा? गुरु की बात वो शिष्य समझने लायक बने, आगे तो बाद में बढ़ेगा वो, उसके उसको समझने लायक तो बने पहले वो। इसीलिए महाजी ने समतावास में लिखा, प्रेमी सबसे पहले क्या कर, तू अपने स्वार्थ जीवन को शुद्ध कर। यहां से वो शुरू कर रहे हैं, प्रेमी अपने स्वार्थ जीवन को शुद्ध कर, अर्थात तेरा जो सबके साथ व्यवहार है वो मर्यादा का व्यवहार हो, तेरे अंदर जो दूसरे का हक छीनने की लालसा बनी रहती है कि इसकी चीज भी मुझे मिल जाए, तो ये जो दूसरे का हक हासिल करने की भावना है इससे तू मुक्त हो, अपने हक पर कायम रहे, उसमें संतुष्ट रहे। कमाई गलत करता है, किसी को धोखा देता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, किसी के साथ छल करता है, उसमें तू ईमानदारी से बरतना सीख। तो हर मामले में जो हम सामाजिक बुराई कहते हैं या व्यक्तिगत बुराई कहते हैं, उन बुराइयों से मैं मुक्त हूं, एक साफ सुथरा आदमी, एक सत्य प्रिय आदमी मैं बन जाऊं। तो उसके बाद महाराज जी कहते हैं, तो आगे की बात है कि अब तो त्याग करना शुरू कर। देखो जो गलतियां करते आ रहे हैं उसको ठीक कर लेना, यह त्याग नहीं है, ये तो शैतानियत से मुक्त होना है। शैतान है हम, शैतान से हमने मनुष्य बनना है पहले। तो जब मनुष्य बन जाते हैं तब अध्यात्म की तरफ हमको चलने की बात कही जाती है। तो पहले गुरु की ये सादी सादी बातें हमारी आसानी से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि ये तो हम जानते ही कि एक दूसरे से इन्हीं के कारण परेशान होते हैं। कोई हमसे झूठ बोलता है तो परेशान होते हैं, देखो झूठा है आदमी। हर व्यक्ति को सच्चा आदमी चाहिए लेकिन खुद वो झूठा बना रहता। झूठे आदमी को भी सच्चा आदमी चाहिए। तो ये चीजें हम जानते हैं कि ये गलत है, तो इसलिए माही करें, प्रेमी जो तू जानता है गलत है, पहले तो उसका तो त्याग कर और साफ सुथरा बन जा। उसके बाद हमको आगे की बात कही जाती है। वो कहते हैं तू दूसरों की सेवा करना सीख, अर्थात तुझको दूसरे का कष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, चाहे वो घर से शुरू करो चाहे वो समाज से शुरू करो। कष्ट तेरा भी है, कष्ट उसका भी है, लेकिन तुझको दूसरे का कष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, तो अपना थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करके दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश कर। जब तू ऐसा करता है तो गुरु आगे एक दूसरी बात कहता है फिर कि उससे कुछ बदले में आशा मत रख, कि तूने जो उसके लिए अच्छा किया है इसके रिटर्न में ईश्वर तुझको सुख देगा और वो व्यक्ति तुझको सम्मान देगा या सुख देगा, ये आशा मत रख। इस आशा रखने का मतलब तो हो गया तेरी स्वार्थ की सेवा हो गई, तू दे रहा है तुझको वापस मिल रहा है, ये तो गिव एंड टेक वाला मसला हो गया, लेन देन हो गया, ये तो व्यापार हो गया, ये सेवा का हो। तो गुरु के अनुसार सेवा का मतलब है कि अपना सुख दूसरे को दे दिया और बदले में उसने उससे कुछ आशा नहीं की, एक ईश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु मेरी सेवा तुमने कबूल कर ली, इसी में वो खुश है। तो ये जो सेवा है आपकी जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपको ईश्वर की याद दिलाती है। यदि आपको सम्मान भी चाहिए, अरे एक बार थैंक यू तो बोल देता ये मुझको, ये तो ईश्वर की याद नहीं दिलाएगी आपको। वही सेवा आपको ईश्वर की याद दिलाएगी जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके भी आगे महाराज जी निष्काम सेवा की बात करते हैं कि सेवा जो की उसका नतीजा क्या निकला। मान लिया तूने किसी पेशेंट का इलाज किया या उसके इलाज पे पैसा खर्च किया, اب تو سوچتا ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے 20,000 روپے خرچ کر دیے اور پتہ لگا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا یا مر ہی گیا, تو تیرے من میں افسوس ہوتا ہے میرا پیسہ بیکار گیا, علاج کرانا بیکار ہو گیا اس کا. تو تیرے جو اس پہ نتیجے پہ جو نگاہ ہے, پھل پہ جو نگاہ ہے, تو نشکام سیوا کا مطلب پھل کے پرتی بھی تو نرلیپ رہنا چاہیے, ادھر کی ادھر ختم. میں نے سیوا کی, یہ بھاؤ تیرے اندر بنا ہی نہیں رہنا چاہیے, تو وہ نشکام سیوا ہو جاتی ہے. اب یہ نشکام سیوا گرو آپ سے کیوں کروانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو کرتاپن سے مکت کرنا ہے نا, اس نے اسی نگاہ کہاں ہے گرو کی, آپ کو کرتاپن سے مکت کرنا ہے. تو کرتاپن تو بڑی باریک چیز ہے, تو پہلے تو اس نے آپ کو جو کرم کر رہے ہو اور اس کرم کے پھل میں آپ کی جو لگن لگی ہوئی ہے, اس کا نتیجہ یہ جب نکلتا ہے کرم کا آپ کے من کے انکول تو خوش ہوتے ہو آپ, اور من کے پرتیکول جب سیوا کا بھی نتیجہ نکلتا ہے تب آپ کو بے چینی سی ہوتی ہے, کچھ دکھ ہوتا ہے. تو یہ کرم پھل کے اندر آپ کے من کی جو آسکتی ہے یہ آپ کو صحیح سمرن نہیں کروانے دیتی, صحیح سمرن نہیں کرنے دیتی, وہ نتیجہ آپ کو یاد آتا ہے, اس کا سنسکار من میں بن جاتا ہے. سوارتھ کرم کا تو بڑا گہرا سنسکار بنتا ہے, لیکن اس پرمارتھ کرم کا بھی, یہ ست کرم کا بھی جس کو ہم نشکام سیوا کر رہے ہیں, یدی نشکامتا پوری طرح سے نہیں ہے تو اس کا بھی امپریشن آپ کے من پہ بنے گا اور وہ آپ کو سمرن کرنے بیٹھو گے تو وہ بھی یاد آئے گا. تو اسی لیے ہم میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ گرو مجھ سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا ہے. ہمیں سماج یاد آتا ہے, دیش یاد آتا ہے, وہ تو دیش بھکتوں کا کام ہے, سماج سیویوں کا کام ہے, یہ بھکت کا کام نہیں ہے. دیش بھکت کی سیوا میں, سماج سیوی کی سیوا میں اور بھکت کی سیوا میں زمین آسمان کا انتر ہے. وہ ہر وقت جانتا ہے یہ سیوا میں ایشور تک پہنچنے کے لیے کر رہا ہوں, اس کے اندر یہ خیال بنا رہتا ہے کہ میں یہ سیوا ایشور کو جاننے کے لیے کر رہا ہوں اور میرا اس سیوا کرنے کا کوئی ادیش نہیں. سیوا کا پھل تو آٹومیٹکلی ہوگا, لوگوں کی سیوا کر رہا ہو لوگ بھی دور ہوگا, غریبی کسی کی سہایتا کر رہا ہو غریب کی تو غریبی اس کی دور ہوگی, وہ تو ہوگا ہی ہوگا, کرم کر رہے ہو تو پھل تو ہوگا اس کا, لیکن اس کا جو افیکٹ آپ کو چاہیے, آپ کی نظر تو وہاں رہنی چاہیے نا کہ گرو مجھ سے سیوا کیوں کروا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ سادھارن روپ میں وچار کر کے دیکھو, جب آپ نے گرو دھارن کیا ہے, شاستر پڑھے ہیں, تو ایک بھاؤ تو آپ کے اندر بنا ہی رہتا ہے کہ ساری دنیا پربھو چلا رہے ہیں. یہ بھاؤ تو ایک موٹے روپ میں بنا رہتا ہے نا آپ کے اندر, اور پریکٹیکلی بھی وچار کر کے دیکھو تب بھی آپ کو پتا جائے گا ساری پرکرتی اتنی بڑی ہے, یہ منشیہ تو رول ہی نہیں ہے, یہ ساری پرکرتی ایشور کے ہی آدھین کاری کر رہی ہے. منشیہ تو پرکرتی کو بگاڑ دیتا ہے, پرکرتی کو بناتا تو ہے نہیں. آج تک جو بھی اتہاس دیکھو وشو کا, منشیہ نے پرکرتی کو برباد کیا ہے, پرکرتی بنائی نہیں ہے اسے. تو جو ایشور سارے برہمانڈ کی رچنا کر رہا ہے, سارے برہمانڈ کو چلا رہا ہے, اس کا پالن کر رہا ہے, اس کو کیا میری اس تچھ سی سیوا کی ضرورت ہے؟ وہ میری بنا سیوا کے کام نہیں کر سکتا اپنے کیا؟ وہ میرے شریر کا بھی وہ پالن کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ مجھے بھلے یاد نہ ہو لیکن میرے شریر کا پالن کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ یعنی ایشور کی کرپا شریر کو ملنی بند ہو جائے تو ابھی مر جائے گا, یہ تو ایک شانس بھی نہیں آئے گی اس کو. تو جو ایشور اتنا کر رہا ہے تو تیری جو اتنی سی سیوا ہو پا رہی ہے اس پوری سرشٹی میں, تو کیا ایشور کو تیری اس سیوا کی ضرورت ہے؟ تو فیکٹ یہ ہے کہ اس پرکرتی کو میری سیوا کی ضرورت نہیں ہے, اس سیوا کی مجھے ضرورت ہے اپنے کلیان کے لیے. तो मैं अपने कल्याण के लिए वो सेवा रूपी साधन जो गुरु ने बताया है मैं उसको अपना रहा हूं। तो वो जो सेवा है वो कह रहा है कि निष्काम सेवा होना चाहिए। गुरु यही तो कह रहा है। देखिए आज की स्थिति में मैं निष्काम सेवा करने लायक नहीं हूं, लेकिन गुरु का जो गोल है या गुरु की जो अप्रोच है वो मुझको निष्काम करने की है कि मैं निष्काम हो जाऊं। तो निष्काम स्वार्थ में तो निष्काम हो ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए वो कहता है कि जहां से रिटर्न मिलने की आशा ना हो वहां तू सेवा करने की कोशिश कर निष्काम भाव से, इसका तुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए। उसके पीछे भावना एक ही हो कि निष्काम सेवा यदि इस देह से हुई तो प्रभु प्रसन्न होंगे, प्रभु की ग्रेस मुझको मिलेगी, प्रभु की कृपा मुझको मिलेगी, मैं उसका अधिकारी बनूंगा। देखो ना, तो आपको रिटर्न चाहिए तो किस रूप में चाहिए? प्रभु कृपा रूप में चाहिए, ताकि इस देह के बंधन से, मन के बंधन से मैं मुक्त हो सकूं। तो सेवा का जब ये भाव और ये विज्ञान मेरे मन में रहता है तो फिर मैं सत्कर्म करता हूं, सेवा रूपी सत्कर्म करता हूं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी सेवा भी अनलिमिटेड नहीं, क्योंकि सिमरन भी तो तूने करना है, सिमरन भी तो तूने करना है। इसलिए महाराज कह रहे हैं प्रेमी समय सीमा बांधकर स्वार्थ और परमार्थ का प्रोग्राम बनाओ और उस पर अमल करो। तो परमार्थ का प्रोग्राम क्या है? सिमरन करना परमार्थ का प्रोग्राम है। सत्संग श्रवण करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सत्मार्ग पर चलने वालों की संगत करना या गुरु है तो गुरु की संगत करना, यह सत्संग का स्वरूप है। भाई सत्संग कहां से मिलेगा आपको? यहीं से तो मिलेगा आपको। तो जितने भी ये प्रोग्राम हैं वो आपके इसी वास्ते हैं कि सिमरन में आपको संसार याद ना आए, सिमरन में आपको अपने करने का फल याद ना आए, उस प्रभु को सारे जगत का कर्ता समझकर, उस प्रभु को सारे जगत का कर्ता समझकर तू उस प्रभु की प्रेम से याद अंदर करता रहे। तो ये याद आपसे, ये सिमरन तेरा बन सके, इस वास्ते तुझको सेवा करने को कही जा रही है। तो सेवा को यदि इस परिपेक्ष में हम नहीं देखते, इस नजरिए से नहीं देखते, तो सेवा में ही फंस जाएंगे। बड़े बड़े सेवा के ही हम प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे और आयु कितनी सी है, खत्म। क्योंकि जो सेवा में रुचि रखने वाले लोग हैं वो भी एक टाइप के लोग हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं उसमें, तो उस सेवा का भविष्य में उनको फल क्या मिलता है? सुखरूप फल मिलता है उनको, लेकिन बंधन तो नहीं कटा ना उनका, जो रोग था वो तो वैसे के वैसे बना रहा। तो मेरे अंदर जो कर्तापन है, मेरे अंदर जो देह का मद है, मैं देह हूं, ये नशा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, समझिए, तो वैसे के वैसे बना रहा। तो इसीलिए यदि आपके अंदर ये विवेक नहीं है, ये अपने बारे में सही समझ नहीं है, तो फिर आप गलती करते रहोगे, कहीं ना कहीं फंसे रहोगे आप। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वाणी कह रही है कि ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत। ये संसार एक सराय की तरह से है, जीव मुसाफिर नीत, जीव यहां नित्य का मुसाफिर है, क्योंकि आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, इस जगत में ये नित्य का मुसाफिर है। मुसाफिर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले लोग यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, मंजिल दूर होती थी, कई दिन की यात्रा होती थी, महीनों की होती थी, तो रास्ते में कहीं धर्मशाला में टिक जाते थे। तो धर्मशाला में जो यात्री टिकता है उसको मंजिल हमेशा याद रहती है, और ये जानता है कि ये बीच में पड़ाव मिला है मुझे और कुछ समय यहां पर रहना है, अपनी मंजिल तय करने के लिए फिर निकल जाना है। तो ये देह सराय की तरह से है, गुरु याद दिला रहा है आपको, गुरुवाणी आपको याद दिला रही है, ये देह सराय की तरह से है। तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, यात्रात्री क्या है, ईश्वर तक पहुंचना, यात्रा पूरी करने के लिए ये कुछ अवधि मिली है। मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत, कुछ पीरियड मिला है तुझको, कुछ आयु मिली है इसमें निवास करने के लिए, ताकि तू मंजिल तक पहुंच जाए। तो मैं मंजिल को भूले बैठा हुआ हूं, इस देह को ही मंजिल समझे बैठा हुआ हूं, मुझे ना अपना होश है ना मंजिल का होश है, अपने को भी कुछ का कुछ समझ रहा हूं, ईश्वर को भी कुछ का कुछ समझ रहा हूं। तो बताइए कि मैंने इस देह के अंदर ऐसे रहना था जैसे सराय के अंदर मुसाफिर रहता है, इस होश में रहना था मैं, और ये तो ऐसी तरी सराय है जहां मुसाफिर भी मौजूद है, जहां मंजिल भी मौजूद है, इस देह के अंदर ईश्वर भी मौजूद है, इस देह के अंदर भटकने वाला दुखी जीव भी मौजूद है। तो अब बताओ मुझे, वाणी आपको याद दिला रही है, क्यों नर मोह मंदिर में सोया, जन्म अमोलक भ्रम में खोया। वाणी आपको याद दिला रही है, तू इस देह में सो रहा है। जो जीव अपने आप को देह समझकर जीवन जी रहा है सांसारिक, वो सो रहा है, वो होश में नहीं। इसलिए ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, हर चीज का अहंकार होता है उनके अंदर, जो कुछ भी करेंगे हर चीज का अहंकार होता है। तो अब बताइए, मेरे बारे के अंदर, मेरे बारे में जो बेसिक ज्ञान है, फंडामेंटल जो नॉलेज है, वो तो ये है, इसके बिना तो आपका आध्यात्म मार्ग तय हो ही नहीं सकता। ये बेसिक नॉलेज है मेरे बारे में, ABCD है, कि मैं जीव हूं, ये देह वास्तव में सराय की तरह से है, अर्थात कुछ दिन रहने के लिए मिली है, और मेरा मालिक जो सारे दुखों से मुक्त है, जो सारी वासना से मुक्त है, और जो सारे द्वंद्व खेद से मुक्त है, द्वंद्व खेद का मतलब जैसे सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, बनना बिगड़ना, मित्र शत्रु, ये द्वंद्व खेद है, सारी प्रकृति में हर चीज द्वंद्व रूप में है, इसलिए आप कुछ भी कर लो, इस द्वंद्व के अंदर ही आपकी क्रियाएं होंगी, इस द्वंद्व के अंदर ही आपको फल की प्राप्ति होगी, इस द्वंद्व के अंदर ही आपको भोग भी प्राप्त होंगे। तो फिर इसका मतलब आपकी बेचैनी, संसार में कुछ भी कर लो आप, आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो प्रकृति चक्र है, पूरी जो सृष्टि है, ये द्वंद्व रूप है, और मुझको एक चीज चाहिए। हर व्यक्ति से पूछो क्या चाहिए, सुख चाहिए मुझे, दुख चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उस मूर्ख से पूछो, जब पूरी प्रकृति का चक्र द्वंद्व रूप है, तो ये एक चीज कैसे मिल जाएगी। इसलिए प्रकृति का सिद्धांत है, यदि आपको 80% सुख चाहिए, मान लिया, कह रहे 20% दुख मिल जाए, नहीं 80% सुख चाहिए मुझे, तो याद रख, तूने 80% दुख के बीज तो बो दिए। जिस दिन तूने 80% सुख प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया, तूने 80% दुख पैदा करने वाले बीज तो तूने तुरंत बो दिए, क्योंकि महाराज कह रहे हैं सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। संतरास पढ़ के देखिए ध्यान से, ये वर्ड्स लिखे हैं नहीं लिखे वहां पर, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। तो इसके पीछे प्रकृति का सिद्धांत काम कर रहा है, प्रकृति द्वंद्व रूप है। दिन से रात का उदय होता है और रात से दिन का उदय होता है, होता है नहीं होता है। सुख से दुख का उदय होता है और दुख से सुख का उद्य होता है, ये पूरी प्रकृति द्वंद्व रूप है। तो जो प्रकृति का सिद्धांत है मैंने वो सीखना पड़ेगा ना, तो ये गुरु हमको सिखा रहा है, ये शास्त्र हमको सिखा रहा है, साइंस नहीं सिखा रही है हमको। ये साइंस में द्वंद्व की बात नहीं आती कहीं पर, ये अध्यात्म विद्या में ये बात आती है। और जो ये सारी प्रकृति का रहस्य, तो जिस जीव ने इस प्रकृति के सिद्धांत को नहीं सीखा, ईश्वर के सिद्धांत को नहीं सीखा, वो सारी जिंदगी धोखा खाएगा या नहीं खाएगा, विचार करके देखो। बड़ी बड़ी हायर क्वालिफिकेशन अटेंड कर लेगा वो, लेकिन इसको अपने ही बारे में ABCD नहीं पता है। अपने ही बारे में इसको ABCD नहीं पता। दुनिया को कोई आदमी देखा है आपने जो जानता हो, जितना ज्यादा सुख इकट्ठे करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा दुख तुमको उठाना ही पड़ेगा। जैसे आप ये समझ लो, एक मोटी सी बात समझने के लिए, कोई व्यक्ति बचपन से एक लक्ष्य लेके चल रहा है कि मैंने IAS बनना है, ठीक है। तो जिसने IAS बनना होगा उसको कितनी बारीकी के साथ स्टडी करनी पड़ेगी और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितने खेल का कितने सुखों का त्याग करना पड़ेगा, ये आप कल्पना कर सकते हो ना, इतना एहसास तो आप कर ही सकते हो। तो बताइए कि जब IAS बनेगा तो बनेगा, 25 साल बाद 20 साल बाद जब भी बनेगा वो, लेकिन कितना कष्ट उठाएगा उस स्टडी के लिए, कितना कष्ट उठाएगा स्टडी के लिए। इतना कष्ट उठाने के बाद ही तो वो सुख की कल्पना कर सकता है। उसके बाद भी पता नहीं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, गारंटी तो नहीं कोई भी। जब बनने का वक्त आया शरीर में कोई रोगी खड़ा हो जाए, ऐसी बीमारी लग जाए कि मेडिकल टेस्ट ही आप ना पास कर पाओ, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आपने सुख का एक लक्ष्य बनाया तो दुख तो मिलना शुरू हो गया। ये दुख किसने पैदा किया है? आपके सुख के लक्ष्य ने आपके लिए दुख पैदा किया है। तुम देखते तो सुख को हैं, लेकिन कितना उस सुख प्राप्ति के लिए दुख भोग चुके हम उसकी गिनती नहीं कर। उसको कहते हैं हमने देखो कितना पुरुषार्थ किया है। प्रैक्टिकली देखो, आप दुख भोग रहे हो नहीं भोग रहे हो? तो हम चीजों को ऐसे ही देखते हैं। एक सफलता का कोई भी लक्ष्य बनाया संसारिक हमने, उसके लिए कितना लंबा हम क्लेश भोगते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितना माता पिता भी दुखी होते हैं, उनको भी तप करना पड़ता है, मुझको तो करना ही पड़ता है। तो ये सारा सारा मनुष्य के लिए सुख है या दुख है? भविष्य में सुख मिलेगा इसके लिए वर्तमान हम दुखी कर लेते हैं। ठीक चीज है, संसार में ऐसे ही चलता है, संसार में इसी को सफलता कहा जाता है, वो सब ठीक है। लेकिन अध्यात्म की बात जब हम करते हैं तब हमारी दृष्टि इस द्वंद्व चक्र पे जाती है कि सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैंने अध्यात्म विद्या समझी है तो ये जो संसार का जीने का तरीका है, सुख प्राप्ति के लिए जीना, ये मूर्खता से भरा हुआ तरीका है। इससे बड़ी फुलिशनेस कोई नहीं हो सकती, लेकिन इस फुलिशनेस का इस जीव को तभी पता लगता है जब वो अध्यात्म विद्या सीखता है। तब उसको पता रहता है मैं कर क्या रहा हूं, ये तो ऐसे ही हो गया। एक व्यक्ति 4 फीट खंभे के ऊपर चढ़ा, फिर 4 फीट नीचे फिसल गया, फिर 4 फीट ऊपर चढ़ा, फिर 4 फीट नीचे फिसल गया। 10 साल बाद वो कहां पहुंचा? जहां था वहीं रहा। तो हमारी प्रक्रिया तो यही है, ये सुख दुख की जो प्रक्रिया है इसी तरह की। तो पूरा जन्म हमारा बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, पैसा कमाते कमाते, सुख खरीदते खरीदते, लेकिन मंजिल हमको क्या प्राप्त होती है? बुढ़ापा, बुढ़ापा एक बार मौत। जवानी भी छिन गई हमारी, भाई जवानी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है ना, और बुढ़ापा अपने आप में दुख है। कोई दुखी क्या करेगा आपको, बुढ़ापा अपने आप में दुख है। तो जवानी भी छिन गई, बुढ़ापा हमारे हाथ में आ गया, और जिंदगी भी छिन गई, मौत हमारे हाथ आ गई। ये हमारा नेट कमाई का रिजल्ट है जो हम सब भोगते हैं। लेकिन सत्पुरुषों को देखो, महा जी तो 50 साल की आयु में चले गए ना, लेकिन किस हालत में गए, किस हालत में गए? यदि वो दुखी की होके जाते संसार को, हम उनके पास जाते क्या? हम यदि वो दुखी हालत में जाते संसार से, तो हम क्या कभी उनके पास जाते या कभी उनको याद करते? हम उनको इसलिए याद करते हैं कि वो परम आनंद की हालत में थे, और देह की मौत के साथ उनकी मौत नहीं हुई। हम आज भी उनकी बात को याद करते हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार। हम उस गुरु को अंतर्यामी मानते हैं, गुरु को तो हम अंतर्यामी मानते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज क्यों रहते हैं? कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि अपने आप को हम शरीर मानते हैं, देह मानते हैं। गुरु की याद आपको तब आए प्रेम से जब आप अपने आप को जीव समझो, जो कि आप हो। क्योंकि महाजी साफ साफ कह रहे हैं, महाजी खुद कह रहे हैं, प्रेमी जब भगत जी ने पूछा महाजी आपके गुरु कौन है, वो प्रेमी ईश्वर इनका गुरु स्वयं ही है। जब 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा होश था कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है। तो खुद ही एक दिन कहा था उन्होंने, प्रेमी ये पिछले 3 जन्म की कमाई है। तो अब बताइए, जन्म जीव का हो रहा है या जन्म देह का हो रहा है? अरे जीव तो वही ट्रांसफर हो रहा है ना, इस देह में जीव है, और जो जीव की प्रॉपर्टी है वो उसका मन है। मन में ही स्वभाव है, मन में ही कर्मफल सब, मन में ही विचार है, सारा बंडल आपका मन के अंदर है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो देह की मौत हो गई, देह नष्ट हो गई, और जीव अपनी कमाई लेके प्रभु ने उसको नई देह में भेज दिया, नई देह प्रदान कर दी। तो जिस प्रभु ने मरते वक्त मेरी कमाई की रक्षा करी, मेरी रक्षा करी, और जिस प्रभु ने मुझको नई देह प्रदान करी, उस प्रभु को मैं भूल जाता हूं और देह को अपना स्वरूप समझ लेता हूं। तो फिर यह वाणी यदि मुझसे कह रही है कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो खोई, वाणी यदि मुझे पशु कह रही है तो क्या गलत कह रही है? पशु को ही होश नहीं होता, मनुष्य को तो होश होना चाहिए, लेकिन जो संसारी मनुष्य है उसको कहां होश है? जिसने जीवन में गुरु धारण किया है उसको इस बात का होश आता है कि हूं तो मैं जीव, अरे बचपन से मैं क्या समझता रहा हूं, माता पिता ने मुझको तो देह बना दिया। देखिए माता पिता की गलती नहीं है, ये माता पिता ने आपको भोग विलास दे देकर आपको देह बना दिया, ये आपका पक्का और निश्चय और पक्का कर दिया कि तू शरीर ही है। अब गुरु मिला है, गुरु मुझको सिखा रहा है तू जीव है, तू शरीर नहीं है। तो इसीलिए गुरु के बारे में वाणी कर रही है, गुरु सम दाता ना कोई जो खोजे 3 जहान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 3 जहान। गुरु के बराबर तुझको देने वाला कोई नहीं है। जो वास्तव में तुझे संपत्ति दी है वो गुरु ने दी है, तुझे होश में लाया है वो। तो इसीलिए ऐसे गुरु को आप कैसे भूल सकते हो, और वो अंतर्यामी है, गुरु खुद कह रहा है मैं अंतर्यामी। तो जब आप अपने देह भाव से मुक्त होते हो, अर्थात देह मद से मुक्त होते हो, या अपने होश में आते हो कि मैं देह के बंधन में हूं, और वाणी कह रही है मोह मंदिर कह रही है इसको, ये मोह का मंदिर है। मंदिर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर की उपासना करने के लिए ये देह तुझको दी गई है, ये मंदिर है, तू भी इसमें बैठा हुआ है। ईश्वर का दर्शन करने वाला जीव, ईश्वर के दर्शन की इच्छा ले जीने वाला जीव मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, और भगवान खुद मंदिर में विराजमान है। तो इस देह मंदिर में, इसको मोह मंदिर क्यों कहा? क्योंकि मैं इसको अपना स्वरूप समझ रहा हूं, उपासना घर नहीं समझ रहा हूं। इसलिए देह को मस्जिद भी कहा जाता है, देह मस्जिद प्राण मुसल्ला वाणी में आता है। मस्जिद क्या होती है? खुदा की इबादत गाह होती है वो। तो ये इबादत गाह है, मैंने इसको भोग गाह बना लिया है, भोगने का घर बना दिया। ये थी ईश्वर उपासना का घर, मैंने इसको भोगने वाला घर बना दिया। तो कितनी गहरी अज्ञानता को लेकर मैं जी रहा हूं, क्या दुर्दशा होगी मेरी, विचार करके तो देख लो क्या दुर्दशा हो। इसलिए थोड़ा सा दान करता हूं तो अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा किसी को विचार दे देता हूं अच्छा उसका अहंकार आ जाता है, थोड़ी उपासना ईश्वर कर लेता हूं तो बड़ा साधक कहलाने की कोशिश करता हूं मैं साधक हूं, थोड़ा सच बोल देता हूं तो कहता फिरता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कितने अहंकार से कहता हूं कि मैं सत्य बोलता हूं। अरे सत्य बोलना तो तेरा फर्ज है, इसमें अहंकार की क्या जरूरत है, उसका अहंकार करता हूं। अपने आप को एक यूनिक पर्सनैलिटी समझता हूं, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूं समाज के अंदर। तो मेरे अहंकार की, मेरी अज्ञानता की ये हालत है, कितना बेहोश होकर जीता हूं। तो इसीलिए गुरु ने जो सेवा का प्रोग्राम दिया है वो निष्काम सेवा की बात गुरु कर रहा है, और निष्काम सेवा विचार करके देखो, जिस व्यक्ति को इसका इन बातों का होश ही नहीं है वो निष्काम सेवा जिंदगी में कर पाएगा कभी? इसीलिए आप बताइए सत्संग कितना जरूरी है आपके लिए, इन शास्त्रों का स्वाध्याय कितना जरूरी है, क्योंकि सत्संग सुन तो लोगे आप, इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मनन तो नहीं कर पाओगे आप। और होश में रहना तो गहरे मनन से आपको गुजरना ही पड़ेगा। यदि पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हो तो काम चलाने के लिए आप आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सत्संगों को बार बार सुन सकते हो, बार बार सुनोगे चीजें आपको याद हो जाती हैं, फिर उस पर मनन भी कर सकते हो, एक मेथड ये भी है। लेकिन जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, वहां क्या लिखा हुआ है, किस सिस्टम से लिखा हुआ है, आप बार बार पढ़ोगे और एक वचन पे आप घंटा भर भी चिंतन कर सकते हो, तो वो जो मनन प्रक्रिया आपकी चलेगी वो आपको सोचने को मजबूर करती है कि वास्तविकता ये है और मैं सोच क्या रहा हूं। देखो ना, वास्तविकता ये है और मैं सोच क्या रहा हूं, सारी समता विलासें वाणी में हर जगह जीव की बात आई, पढ़ के देखो आप। मनुष्य शब्द का इस्तेमाल यदि मान लिया पूरे ग्रंथ में 10 बार किया गया है तो जीव शब्द का इस्तेमाल वहां पर 500 बार किया गया होगा, तभी मैं स्लिप कर जाता हूं, क्योंकि मनन करने की आदत नहीं ना, इसलिए वर्ड पे ध्यान ही नहीं देता कि ये क्यों लिखा गया यहां पर, उस वर्ड का विशेष महत्व है, विशेष पर्पज है। जीव पढ़ा और मनुष्य उसका अर्थ किया, बस बढ़ गया वो अर्थ ही समझ लिया। तो निष्काम सेवा मैंने करनी है, और निष्काम सेवक वही जीव बन सकता है जो प्रभु दर्शन के लिए जी रहा है, प्रभु प्राप्ति के लिए जी रहा है, अंतर्यामी प्रभु से अंदर ही भेंट करने के लिए जी रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि प्रभु मेरे अंदर मौजूद है, इस देह के अंदर, और मैं खुद भी इस देह के अंदर बैठा हुआ हूं, और मेरी संपत्ति, मेरा जो मन है वो भी इस देह के अंदर है, तो कहां संसार में युद्ध करने जा रहा हूं। तो संसार में क्योंकि कर्म मेरे शरीर से होने हैं, इसीलिए उसमें निष्कामता लाऊं, मैं फल से निर्लेप होने की कोशिश करूं, सुख दुख में सम रहने की कोशिश करूं। इसलिए महाजी कह रहे हैं कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। अब ये त्याग करना है मैंने, कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है, ये वचन संतरदास में लिखा हुआ है। तो चाहे मैं स्वार्थ कर्म करता हूं, चाहे परमार्थ कर्म करता हूं, फल तो दोनों के होते ना, तो दोनों के फल से मेरे अंदर निर्लेपता आ जाए, उसका इफेक्ट लेश मात्र भी ना रहे, तो याद रखिए आपके अंदर उस कर्म के संस्कार ही नहीं बनेंगे। जब निष्कामता आ जाएगी फिर कर्मों के संस्कार आपके अंदर नहीं बनेंगे, और जब तक निष्कामता नहीं आती, अच्छे कर्म करोगे उसके भी संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म करोगे उसके भी संस्कार बनेंगे। तो इसीलिए गुरु का उद्देश्य यह है कि आपके कर्मों के अंदर निष्कामता है, निष्कामता का मतलब होता है कर्म फल द्वंद की आपको याद ना है, उसको भोगने की कामना आपके अंदर ना है। और ये क्यों नहीं आए, क्योंकि तूने सिमरन में मन को पूरी तरह से लगाना है। सिमरन करते वक्त तेरे मन के अंदर संकल्प ना उठे वासना के, डिजायर्स के, तब तुझे प्रभु की इतनी प्रेम से याद आएगी कि तू अपने देह को भी भूल जाएगा, इतनी प्रिय देह को भी भूल जाएगा, तू प्राण को भी भूल जाएगा। ऐसी याद आएगी, तेरी समाधि लग जाएगी, ईश्वर के साथ तू एक ही हो जाएगा। तो बताइए गुरु हमें कहां ले जाना चाहता है, और हम क्या अर्थ करते हैं उनके, अर्थ क्या करते हैं उसका, अनर्थ करते हैं। तो यदि हमको गहराई से पढ़ने की आदत हमको हमने यदि नहीं डाली, तो फिर सेवा के बंधन में भी हम फंस जाएंगे, वो भी हमारे लिए एक बंधन बन जाएगी। सिमरन सेवा के कारण छोड़ बैठेंगे, ऐसा भी आ जाएगा, सिमरन ही छोड़ बैठोगे। जो आपका जीवन था, जो अंतर्यामी ईश्वर से मिलने का रास्ता था, उस रास्ते से ही भटक जाएंगे। तो इसीलिए गुरु की पूरी बात समझना चाहिए, और पूरी बात समझकर जैसा महाजी कह रहे हैं प्रेमी, स्वार्थ और परमार्थ का समय सीमा बांधकर प्रोग्राम बनाओ, फिर उस पर निश्चित होकर चलो। उस लिमिटेड टाइम में जितनी कमाई हो जाए उसमें गुजारा करना सीखो, उसमें संतोष बांध दो, असंतुष्ट मत हो कि पहले इतनी कमाई होती थी अब इतनी सी होती है, ना ना ना। अरे सरल जीवन आपका हो गया तो कमाई की ज्यादा जरूरत क्या है आपको, और जिंदगी का सबसे जरूरी काम जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला आपको, वो तो अंदर अंतर्यामी ईश्वर की उपासना था, उससे मिलने भेंट करने के लिए जीना था। अब तुझको मौका मिला है तो इसी सबसे जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस का काम है मनुष्य जन्म में वो तुझे करने को मिला है, उसकी क्या कीमत रहेगी तेरे उन कामों की जो पहले किया करता था। इसलिए सेवा को हम इस लाइट में देखें, फिर फंसेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, और जिंदगी का असली काम करके संसार से विदा होंगे। ओम ब्रह्म सत्यम।